ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में जो भी नियम और मर्यादाएं हैं, जब तक हम उनका पालन नहीं करते तब तक इस जीवन में आनंद नहीं आता। जब तक हम स्वयं को कुछ नियम और मर्यादाओं से नहीं बांधते तब तक उन्नति का अनुभव नहीं होता। ब्राह्मण बन गए, थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लिया, बाबा से एक दो बार मिल लिए, थोड़ी बहुत अनुभूति भी हो गई, परंतु वो परम सत्य नहीं है। इस पथ पर यदि आगे बढ़ना है और अपने जीवन को वास्तव में आनंद से भरपूर करना है तो सबसे पहले तो जानना होगा वो कौन से नियम है, कौन सी मर्यादाएं है, कौन से सूक्ष्म नियम है और कौन सी सूक्ष्म मर्यादाएं है। स्थूल तो सभी जानते हैं, परंतु जैसे जैसे हमारा मन पवित्र होते जाता है, शुद्ध होते जाता है, उन नियमों की बारीकी का हमें ज्ञान पता चलता है। बाबा ने जो भी नियम बताए हैं उसके एक एक नियम और एक एक मर्यादा के पीछे डीप फिलॉसफी है, एक सूक्ष्म मनोविज्ञान छिपा हुआ है। आज जगत में मनोविज्ञान की हजारों किताबें हैं, भारत में भी और पश्चिम में भी, पूर्व के देश में भी और पाश्चात्य जगत में भी, पर भगवान ने जो मनोविज्ञान बताया है वो इन सब से परे है। सारी ही 70s की मुरलियां व्यक्तवाणियां, सारी 80s की मुरलियां बहुत बहुत गहरी है, एक एक पैराग्राफ बहुत गहरा है। उन सभी को जानना यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ऑलरेडी सभी ने लेट एडमिशन ली है। स्कूल चालू अगर हुई जनवरी में, अगर कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई जून में आता है स्कूल में, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो कुछ उसने नहीं पढ़ा, जो उसका मिस हुआ है, उन सभी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। इस क्लास में ऐसे कितने हैं जिन्होंने 69 से लेकर तो अब तक चली हुई सारी ही अव्यक्तवाणियां पढ़ी है, 69 से लेकर तो अब तक की? कोई नहीं, सभी ने लेट एडमिशन ली है। पहली बात तो ये, एग्जाम जो होने वाली है वो सबकी एक ही तारीख को होने वाली है, सबकी समान है। उसमें फिर ये मत कहना ये आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, दोष किसका है? तुम्हारा। जो कुछ बाबा ने अव्यक्तवाणियां चलाई है अब तक, उसमें बहुत डीप फिलॉसफी है, संपूर्ण मनोविज्ञान है, एक एक बात का ऐसा ऐसा स्पष्टीकरण किया है बाबा ने। अभी जो मुरलिया चल रही है कुछ सालों से, पिछले 4-5 सालों से, ये कोई मुरलिया नहीं, बाबा केवल मिलने आते हैं। ये तो मिलन है, बहलाना है, जो उसको कहना था वो तो कह दिया है उसने। यहां तक कि 26 जून 1969 की एक अव्यक्त वाणी है, 26 जून 1969 जिसमें कहा है बाबा ने, अब पढ़ाई पूरी हुई, अब बाबा मिलने आते हैं। पढ़ाई तो 69 में ही पूरी हो चुकी है, तभी उसी मुरली में बाबा ने कह दिया पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब बाबा केवल मिलने आते हैं। परंतु फिर भी साकार मुरलियों का जो विश्लेषण है, एक्सप्लेनेशन है, वो है अव्यक्तवाणियां। बाकी तो साकार मुरलियों में सारा ज्ञान है। कई लोग कहते हैं साकार मुरलियों में इतना ज्ञान नहीं है, परंतु उसी में संपूर्ण ज्ञान है। मम्मा और ब्रह्मा बाबा इन्होंने थोड़ी ना अव्यक्तवाणियां सुनी, वो तो साकार वाणियां सुन सुन के ही संपूर्ण बने। साकार मुरलियों के बाद जो कुछ चला 69 के बाद, वो जो अव्यक्त प्रवाह बना और बह रहा है, उसकी जो गंगोत्री है 69 से अब तक वो बह रही है, वो जो धारा है बह रही है अभी भी अव्यक्त प्रवाह। तो ये जो मुरलिया है इसमें बहुत डीप फिलॉसफी है, और जब तक हम ये सारी बातों का अध्ययन नहीं करते, स्टडी नहीं करते, हमारे मन में हजारों प्रश्न रहेंगे, चाहे कितनी क्लासेस सुन लो किसी की भी। क्योंकि बाबा ने ऐसी ऐसी बातें बताई है, आश्चर्य लगता है कभी कभी, ये भी बाबा ने बता दिया है, ये भी बता दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है इस भूमंडल पर, एक भी विषय नहीं है जिसके बारे में बाबा ने नहीं बताया है। सारी भविष्यवाणियां सब कुछ बता दिया है। ऐसी हमारे जीवन में आने वाली कोई परिस्थिति नहीं है जिसका वर्णन बाबा ने नहीं किया है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये परिस्थिति है, पर इसका उत्तर किसी भी मुरली में नहीं है, ना ही किसी बहन के पास है, ना ही किसी क्लास में हमको मिल रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु क्या हमें पता है कि बाबा ने वो सब कुछ कह दिया है? हम वहां तक नहीं पहुंचे। हो सकता है भाषा में भी वो बंद है। कईयों को बाबा की भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि बाबा की जो हिंदी है थोड़ी अलग प्रकार की हिंदी है, बाबा की जो शैली है वो अलग प्रकार की है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ज्ञान भाषा की तिजोरी में बंद है, और वो बंद ही रह जाता है जीवन भर। भाषा को भी समझना है और जानना है अगर इस ज्ञान तक पहुंचना है तो। वैसे ही इस ज्ञान को समझना है जैसा वो है और जैसा उसने उच्चारण किया है, नो ट्रांसलेशन, कोई अनुवाद नहीं, जैसा उसने कहा है एक एक शब्द उसको वैसा ही समझना, उसी अर्थों से समझना, उसी भाव से समझना, उसी स्थिति में स्थित होकर समझना जिस स्थिति में उसने वो कहा है। तो एक नियम तो यही आ गया अभी सामने कि हरेक ने कम से कम एक अव्यक्त वाणी रोज पढ़नी है। '69 से चालू कर सकते हैं, 21 जनवरी 1969 फर्स्ट अव्यक्त वाणी। 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, 21 जनवरी को बाबा अव्यक्त बाप दादा आए गुलजार दादी के तन में पहली बार। तो रोज अव्यक्त वाणी, एक अव्यक्त वाणी पढ़ना, इसको एक नियम की तरह जीवन में बना लो। यदि हाँ वो भाषा समझ में नहीं आती और बहुत बड़ी लगती है मुरली, तो एक पूरी अव्यक्त वाणी न पढ़कर एक पेज, एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद, उतना तो कर ही सकते हैं। यदि वो भी नहीं पसंद तो स्पार्क की बहुत सारी किताबें हैं, टॉपिक वाइज, दृढ़ता, बाप समान कैसे बने, उसमें संकलन है बाबा के महावाक्यों का, छोटे छोटे महावाक्य, जो भी टॉपिक है। जैसे हमारी सुबह की क्लास है उधर, उसमें अभी कुमार जीवन पर चल रहा है, उसका 60वां या 65वां पार्ट चालू है अभी, उसके पहले आलस्य अद्विलपन का पूरा हुआ, तो आप भी स्पार्क की जो छोटी छोटी किताबें और इंटरनेट पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, जो सोचते हैं कि हम मोबाइल में पढ़े या टैब पे पढ़े लेकिन कंप्यूटर में पढ़े वो भी कर सकते हैं, परंतु पढ़ना जरूर है। तो एक नियम तो यही आ गया, परंतु अभी हम जिन नियमों की और जिन मर्यादाओं की चर्चा कर रहे हैं वो सुबह से लेकर रात तक हमें क्या क्या करना है इसकी चर्चा हम करेंगे। जब भी कोई ब्राह्मण बनता है तो उसे इन सारे नियमों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है और बहुत सारी बातें फिर मुरलियों से पता चलती है। तो ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण दिनचर्या में सबसे पहला नियम कौन सा है? अमृत वेला। इस सभा में वो हाथ खड़ा करो पिछले एक मास में जिसका एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। एक दिन भी, अगर एक दिन भी मिस हुआ तो हाथ नीचे है। बहुत सारे वो लोग हाथ खड़ा करो जिनका पिछले तीन मास में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। इसमें भी है, वो लोग हाथ खड़ा करो पिछले छह मास में एक दिन भी अमृत वेला जिनका मिस नहीं हुआ। अभी कम हो गए, और अब वो हाथ खड़ा करो जो एक साल में पिछले एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। इसमें भी बहुत है, ठीक है। अभी बहुत पुरुषार्थ करना बाकी है। अगर अमृत वेला ही नहीं कर रहे तो जीवन में प्रश्न ही प्रश्न होंगे, फिर चाहे किसी के पास भी जाओ कभी उत्तर नहीं मिलने वाला। प्रश्न पूछना, प्रश्न से उत्तर नहीं मिलता है कभी भी। जब तक नियम ही नहीं तो प्रश्न तो आएंगे ही, फिर हजारों प्रश्न आएंगे और जितने लोगों से पूछोगे कभी संतुष्टि नहीं होगी। वास्तव में हमारे प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता, यहां तक कि हम बाबा के पास भी चले जाओ और बाबा हमसे, हमको स्टेज पर कहे बच्चे ये करो, पर बाद में हमको उसमें भी संदेह आएगा, करना है कि नहीं करना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है, जो भी प्रश्न है उसका वास्तव में उत्तर अंदर से ही आता है। ऑल द आंसर्स लाइज, ऑल द आंसर्स ऑफ अवर क्वेश्चंस आर इन द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन में हर प्रश्न का उत्तर है, परंतु अवचेतन मन जागृत तो हो, बाह्य मन शांत तो हो, वो कॉन्शियस माइंड शांत तो हो, तब ये जागृत होगा और सबकॉन्शियस माइंड की अवेकनिंग का जो समय है वो है अमृत वेला। इट इज अ टाइम फॉर द सबकॉन्शियस टू अराइज, टू अवेक। वहीं सब कुछ है, अमृत वेला चाबी है जीवन की सभी समस्याओं। जीवन में जितने प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर है, जीवन में जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान है, जितने प्रश्न क्वेश्चन है उन सभी का आंसर है। तो सबसे पहला नियम कौन सा है? अमृत वेला। अभी उसमें भी आंख खुली, वहां से हम चालू करते हैं। सोए हैं, आंख खुली, अब क्या करना है? सबसे पहले तो बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। कौन कौन गुड मॉर्निंग नहीं करता? सभी करते हैं, पर अमृत वेला तो उठते ही नहीं, फिर कब करते? तो आंख खुली, पहला ही संकल्प तो बाबा है, पहला ही संकल्प, फर्स्ट थॉट। जिस विचार के साथ व्यक्ति सोता है उसी विचार के साथ जागता है। टीवी देखते देखते सो रहे हैं, जो देख रहे हैं उसी के साथ उठते ही वो याद आएगा आगे क्या होगा उस सीरियल में, उस न्यूज में। फोन करते करते सो रहे हैं, जिसके साथ फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वही व्यक्ति याद आएगा। सोते समय का अंतिम संकल्प ही जागते उठने का पहला संकल्प बन जाता है। लास्ट थॉट बिकम्स द फर्स्ट थॉट। उस पर हम आएंगे सोए कैसे वो दूसरी बात है, परंतु पहली आंख खुली और बाबा को विश करना, ये पहला। उसके बाद अमृत वेला कहां करना चाहिए, उसका एक नियम है। सबसे पहले खटिया का त्याग करना, अपने बेड से थोड़ा बाहर निकलना, उस पर नींद के वाइब्रेशन रहते हैं। कई लोग वहीं बैठते और वहीं अमृत वेला चालू, नींद में ही अमृत वेला कब पूरा होता है पता नहीं चलता है। हमें याद है हमारा छोटा भाई था, है अभी भी, तो वो जब उसकी जब एग्जाम रहती थी वो क्या करता था, उसको नींद आती थी तो वो क्या करता था, जहां सोता था अगर वो जल्दी उठ गया 6 बजे तो वो अपनी जो खटिया है उसका बिस्तर निकाल के उसको एक जगह रखता था, खटिया को खड़ा करके बाहर रख देता था ताकि वापस मोह ना हो जाकर सोने का, उसको ही हटा देता था, ऐसे करता था वो। जो भी हमारा बिस्तर है उसको ठीक करके रख देना या वहां से हटा के बाहर रख देना, वापस बेड पर अमृत वेला ना हो, अमृत वेला वहां से निकल के दूसरी जगह हो, चाहे वो नीचे ही बैठना पड़े तो ठीक है। अगर कहीं और बाबा का कमरा बनाना है, बनाया हुआ है घर पर, बाबा का ट्रांसलाइट है तो वो तो बहुत अच्छा, और जिनके घर में ट्रांसलाइट नहीं है वो एक ले ले। मधुबन में ट्रांसलाइट मिलते हैं, छोटे भी बड़े भी अलग अलग, एक ऐसा भी अगर घर में विरोध है इस तरह का भी ले सकते हैं जिसमें किसी का चित्र नहीं है, इसका तो कोई विरोध ज्यादा करेंगे नहीं। बाबा का अगर कमरा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है और बना सकते हैं तो बनाओ, अगर बनाना असंभव है तो कहीं पर भी कर सकते हो बैठकर, अगर छत है छत पर भी कर सकते हो। तो दूसरा त्याग उस बेड का। तीसरा, अगर हो सके तो स्नान करके अमृत वेला करें, ब्रश करके और स्नान करके, ये एक सूक्ष्म नियम है, परंतु जो नींद आती है अमृत वेले में फिर नहीं आएगी। ब्रश करते करते ही बहुत सारे यहां की जो नसें हैं एक्टिव हो जाती है, और स्नान करने हमारे शरीर में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद, वो सारे खुलते हैं। हो सके तो स्नान करके, अगर नहीं संभव तो फ्रेश मुंह पे पानी डालकर पूरा फ्रेश होकर ही बैठे ताकि नींद ना आए। तीसरा, फिर चौथा, जब बैठे तो उस अमृत वेला में कुछ नवीनता हो। अमृत वेले की एक छोटी किताब आती है अमृत वेला जिसका नाम है, जिसने नहीं पढ़ी होगी वो उसको पढ़े, पहला तो यही काम करना है। बाकी सारी किताबें छोड़ो, अव्यक्तवाणी छोड़ो, पहले इस किताब को पढ़ो, बाबा ने अमृत वेले के बारे में क्या क्या कहा है, क्योंकि यदि हमारा अमृत वेला नहीं हो रहा है इसका मतलब उसके बारे में हमारे मन में इतनी जानकारी नहीं है, उसके महत्व के बारे में। पहले तो महत्व को समझो क्या है, एक तो ये। फिर उसके बाद में जब हम योग करने बैठे, फिर यहां पर अलग अलग स्थितियों का अभ्यास करना है, कभी समान का अभ्यास, कभी सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करना, कभी परमधाम में जाकर बीज रूप स्थिति में स्थित होना, कभी फरिश्ता बनकर विश्व को सकाश देना, कभी सतयुग का अभ्यास करना कि हम सतयुग में हैं, कभी द्वापर में पूज्य स्वरूप का अभ्यास। ये 5 स्वरूपों की ड्रिल बाबा ने बताई है, इनका अभ्यास करना। एक दूसरा काम है बाबा से रूरियान करना, बात करना, टॉक, टॉक विद गॉड, उसके साथ बात करना। तो ये जो 45 मिनट से 4 से 4:45 तक, हो सके तो थोड़ा जल्दी उठ जाए, ऐसा नहीं कि 4 बजे ही उठे फिर तो 10-15 मिनट चले गए, हो सके तो 4:45 या 3:30 और उसके बाद करें। अगर एकदम ही नहीं उठना होता है किसी का तो फिर धीरे धीरे बढ़ाए। कोई अगर 6 बजे उठता है डेली, अब संकल्प करे कि आधा घंटा पीछे 5:30 बजे कम से कम उठे, 5:30 बजे उठने वाला फिर संकल्प करे और आधा घंटा पीछे कुछ समय के बाद, और पीछे और पीछे 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 4 बजे तक पहुंचना है, उसके भी पहले थोड़ा, ताकि फ्रेश हो जाए 4 बजे तक और अच्छा अमृत वेला हो। यह है पहला नियम, अमृत वेला। अगर नहीं कर रहे हैं तो पहले तो संकल्प करो कि हमें करना है। अगर तब तक जीवन में समस्याएं रहेगी, प्रश्न ही प्रश्न पूछते रहेंगे, ये क्या करे वो क्या करे, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, ये विघ्न डालता है ये विघ्न डालता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करे, ये हजारों प्रश्न आते। हम पहले धारणाओं में तो स्थित हो जाए तो प्रश्न स्वतः ही विलीन हो जाएंगे। तो पहला नियम अमृत वेला। दूसरा नियम, अमृत वेले के बाद कई भाई और बहने हैं जो सो जाते हैं और नींद भी बड़ी आती है, यह एक सार्वजनिक समस्या है। अमृत वेला हो गया, चलो बिस्तर पर और सो जाओ, 6:30 बजे उठना सीधा, फिर फ्रेश होके मुरली। ये जो समय है ये चिंतन का समय है, यही तो अध्ययन का समय है। अमृत वेले में बुद्धि इतनी एकाग्र हो गई, अब उस एकाग्र बुद्धि को अध्ययन में लगाओ, अव्यक्त वाणियां या किताबें जो है उसका अध्ययन करना, ज्ञान की चर्चा करना, मनन करना, अध्ययन करना, पठन पाठन करना, वो सभी बातें करनी है। तो ये जो समय है 4:45 या 5 से लेकर 6 तक का, ये समय है अध्ययन का, ये समय है एक्सरसाइज का, हो सके तो एक्सरसाइज या फिर वॉक, कोई भी एक क्लास ले लो और उस क्लास को सुनते सुनते वॉकिंग करो, अगर नींद करने की आदत है तो लंबा राउंड लगा के आ जाओ, कहीं से दूर चले जाओ और आ जाओ। वॉकिंग, वॉकिंग अपने आप में एक एक्सरसाइज है, सर्वोत्कृष्ट एक्सरसाइज है। एक विदेश का लेखक है, उसने अपने संस्मरण में लिखा है, एक बार मेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हो गया, इतना भयंकर झगड़ा हो गया मेरे पिताजी के साथ कि मैंने कहा अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, और वो निकल पड़ा पैदल, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। और चलते चलते वॉकिंग करते करते उसको पता चला गलती तो मेरी ही है, तो वॉकिंग में ही उसके विचार परिवर्तन हो गए, उसको पता चला गलती तो मेरी ही है, मैं क्यों उनको डांट रहा था, और वापस आता है। तो वॉकिंग के बहुत सारे फायदे हैं। अगर जो वॉक नहीं करते उनको टाइम निकालना है कैसे भी करके वॉक के लिए, और वॉक भी कैसा, अगर हो सके तो कुछ सुनो, अगर नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुनो, प्रकृति का आनंद, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, चिड़ियों की आवाज, प्रकृति का सौंदर्य, पहाड़ नदियां, अगर हो सके तो गार्डन, छत, अगर बाहर जगह नहीं है तो छत अगर है तो छत पे भी जा सकते हैं। ये जो पीरियड है 5 और 7 के बीच का, इसको सफल करना है, ये वेस्ट ना जाए। उसमें अगर फ्रेश होना है तो फिर वो फ्रेश होना, या कुछ बच्चों का कुछ करना है वो भी कर सकते हैं, परंतु इस पीरियड में सोना नहीं है, बस अपने आप को जगा के रखना है। उसके बाद है मुरली, तीसरा नियम है मुरली। आजकल बहुत सारे साधन उपलब्ध है जिस वजह से लोग मुरली सेंटर पर नहीं सुनना चाहते और घर में पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, परंतु यहां आना, when you enter this area, यू आर एंटरिंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड. यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है. इस फील्ड में एंट्री करना, वो सुन तो आप कहीं पर भी सकते हैं, पढ़ तो कहीं पर भी सकते हैं, परंतु वहां बैठना, एकाग्र होना थोड़ी देर के लिए, आप एक प्रयत्न कर रहे हैं स्वयं को जीतने का, अपनी देह को जीतने का. नहीं तो इस तरह कहीं कोई बैठते नहीं है. थोड़ी देर बैठेंगे फिर घूमेंगे, थोड़ी देर करेंगे घूमेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर घूमेंगे. कोई कहते हैं हम टीवी पर देख लेते हैं मुरली, उसमें थोड़ा देर देखते फिर कहीं और कुछ करते. यहां कुछ नहीं कर सकते, यहां बैठना ही पड़ता है. परंतु उतना एक घंटा मन थोड़ा तो एकाग्र होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में, उस स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस में आप होते हो. अच्छा, वो भी मान लिया कि जो बताया जा रहा है वो सब आपको पता है. मुरलियां तो इतनी सुनी है, सबने सब पता है. लक्ष्मी नारायण बनना है, बाप समान बनना है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, काम महाशत्रु है, बाप आया है, आत्मा समझ बाप को याद करो, अब घर चलना है, विनाश सामने खड़ा है, सारी बातें सबको पता है. यही तो है ना मुरलियों में, यही सोचते हैं कि हमको सब पता है. उसके लिए नहीं, उस स्वरूप में स्थित होने के लिए कि भगवान पढ़ा रहा है, योग के लिए. वो मुरली योग में परिवर्तन कर दो उसको. भगवान सामने बैठा है, मैं यहां बैठा हूं, वो पढ़ा रहा है. शब्द इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो वाइब्रेशंस, वो स्थिति, वो समान, वो नशा ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके लिए मुरली यहां आकर सुननी है, घर पर नहीं. हाँ, कोई कारण है तो दूसरी बात है. कभी एक ज्ञानामृत में किसी ने आर्टिकल लिखा था 108 कारण मुरली न सुनने का. हमें याद नहीं कौन से ज्ञानामृत में आया था, परंतु एक बार आर्टिकल आया था, किसने लिखा था पता नहीं. उसमें कई सारे कारण थे, बारिश आ रही, घर में मेहमान आ गए, पेट में दर्द, सिर में दर्द, हाथ में दर्द, इस तरह के बहुत सारे कारण थे. 108 कारण थे मुरली न सुनने के. प्रोग्राम थोड़ा अच्छा चल रहा था टीवी पर, या मैच चल रही थी, या कुछ और हो रहा था, थक गए थे, थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा था, इस तरह के बहुत सारे कारण उसमें दिए थे. तो जितना हो सके सेवा केंद्र में जाकर ही, आश्रम में जाकर ही मुरली सुननी है. और एक उसी में मुरली सुनते समय बुद्धि जिनकी बहुत भटकती है, वो लक्ष्य रखो कि बहुत सारी पॉइंट्स लिखे, या जिनको नींद आती है, सोचो हम बहुत सारी पॉइंट्स लिखे, और फिर उसको रिवाइज भी करना होता है, वो दूसरी बात है. या फिर आजकल तो मुरली अवेलेबल होती है मोबाइल पे, थोड़ा सा अगर हो सके तो आते आते ही थोड़ा पढ़ लेना, ताकि बुद्धि और थोड़ी जागृत रहे. हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ लो और फिर आओ ही नहीं, जाना तो है, बैठना तो है, परंतु हमने अगर थोड़ा सा पहले ही पढ़ के रखा है तो और ज्यादा बुद्धि एकाग्र हो जाती है. एक तो ये. उसके बाद में अमृत वेला, मुरली, उसके बाद में है हमारी दिनचर्या जो चालू होती है. उसमें एक जो नियम बाबा ने बना के रखा है वो है ट्रैफिक कंट्रोल का. अभी कईयों की ड्यूटी ऐसी है कि जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल करना असंभव है, वो बहुत बिजी होते हैं ऑफिस में, तो हम अपना ट्रैफिक कंट्रोल सेट करें पहले. तो अगर हमारे पास इतना हम बिजी नहीं है 10:30 और 12, तो हम वो करें. अगर बिल्कुल ही नहीं होता तो कम से कम उस 3 मिनटों में सुबह मुरली में क्या सुना वो याद करने का प्रयत्न करें, इतना तो कर सकते हैं. नहीं तो सिंपल से अभ्यास, मैं आत्मा हूं, शांति की किरणें मुझसे फैल रही है, बस छोटा सा अभ्यास. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझसे शक्तियां फैल रही है, छोटा सा अभ्यास. छोटे छोटे अभ्यास करने हैं ट्रैफिक कंट्रोल. फिर एक नियम है भोजन का, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है. उसमें नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन सब आ गया. भोजन में सबसे पहला जो है वो है पैसा, किस पैसे से वो भोजन बनाया जा रहा है उस पर बहुत निर्भर करता है. वो पैसा यदि 2 नंबर का है, ईमानदारी से नहीं आ रहा है तो कितना भी योग करो सफलता नहीं मिलेगी। जिस तरह से कमाया जा रहा है, किसी को धोखा देकर, किसी का खून चूसकर अगर वो पैसा आ रहा है इस घर में तो वो कभी सफल नहीं होगा। पहला नियम तो ये भोजन का। दूसरा नियम है किचन जो है उसकी साफ सफाई। दादी जानकी कहती है कि कहीं पर भी वो जाते हैं तो सबसे पहले किचन देखते हैं, अगर किसी गृहस्थी के घर गए तो किचन कैसा है। जिनका किचन जितना साफ सुथरा होगा उसी से वो घर कैसा है वो पता चलता है। कई लोग, जैसे कहावत है ना हिंदी में, जो झूठे बर्तन रात में वैसे ही रख देते हैं वो बर्तन रोते हैं रात भर, बर्तन रात भर रोते हैं अगर उनको झूठे वैसे ही छोड़ दिया सुबह के लिए। भोजन तैयार होने के बाद किचन ऐसा साफ सुथरा हो कि किसी को पता भी नहीं चले कि यहां भोजन अभी बनाया था कुछ देर पहले, इतनी उसमें सफाई हो। हर चीज अपनी जगह पर रखो, ऐसा नहीं कि कोई आ जाए और ढूंढते ही रहो, मिले ही नहीं वो चीज, पता नहीं कहां रख दी, हो सके तो उस पर लेबल लगा हो, इस डिब्बे में ये है, उस डिब्बे में ये है, ताकि ढूंढना ना पड़े, और बहुत सफाई से। उसके बाद है बनाना, भोजन बनाना। भोजन बनाना अर्थात ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, इसको अपने योग में परिवर्तन कर दो। भोजन बनाने का जो समय है, एक घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, डेढ़ घंटा, उसको कन्वर्ट कर दो योग में। कैसे? पहले तो सुमान में स्थित होकर भोजन बनाना, या फिर बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। कभी कभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली चला दो, उस आवाज सुनते सुनते भोजन बनाना एक। दूसरा, कोई ना कोई सोमान ले लेना, उस सोमान में स्थित होकर भोजन बनाना। और सबसे मुख्य सोमान यह है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। भोजन जो बन रहा है उसमें बहुत प्यार से उसको बनाना है। जैसे एक माँ है जिसका बेटा विदेश रहता है और विदेश से 10 साल के बाद लौटा है, तो कितना प्यार से बनाती है वो। ऐसे समझो कि किसके लिए हम ये भोजन बना रहे हैं, बाप के लिए, तो इतना प्यार उसमें भरा हो। और एक बात, जो भोजन बना रहे हैं, एक एक सामग्री को दृष्टि देते देते बनाना। यदि तेल डाला तो अब इस तेल को दृष्टि दो, पवित्रता की किरणें। जीरा डाला, उस जीरे को भी दृष्टि दो। मसाला डाला, उस मसाले को भी दृष्टि दो। हर एक जो जो सामग्री डाली जा रही है, चावल डाल रहे उस चावल को भी दृष्टि दो, और संकल्प करो कि मेरी आंखों से पवित्रता की किरणें जाकर इस चावल में समा रही है। बनाते समय भी योग युक्त स्थिति हो। बहनों को हंसी आ रही है थोड़ी तो ऐसी योग युक्त और समान की स्थिति में भोजन बनाया जाए। बार बार याद करना है किस में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हो सके तो संपूर्ण मौन में। कईयों की आदत होती है भोजन बनाते समय बीच में खा भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, भोजन भी बना रहा है थोड़ा खाना भी चालू है, अगर ककड़ी है गाजर है वो इधर भी थोड़ा उधर भी थोड़ा, इधर भी थोड़ा उधर भी थोड़ा, ये भी एक सूक्ष्म आदत है। भोजन बनाते समय दोनों तरीके से, जिह्वा और मुख दोनों ही बंद हो तो बहुत अच्छा हो। थोड़ा बहुत बोलना है तो बोलो। तो भोजन इस तरीके से बनाना है कि हमें भी आनंद आ जाए, इतना मौन में, इतना योग युक्त स्थिति में, एक एक सामग्री को दृष्टि देते हुए, बाबा को समर्पण करते हुए, प्यार के संकल्प उत्पन्न करते हुए। यदि बाबा की आवाज नहीं है तो कोई क्लास सुनते हुए जिसमें ज्ञान की बातें हो, बाबा के गीत सुनते समय, सुनते सुनते भी भोजन बनाया जाए। किचन का जो वातावरण हो, आपको पता है जो भारतीय संस्कृति में जो भोजन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? महाराज, महाराज होते हैं ना, उनका जो उनकी जो रसोई होती है उसमें कोई भी अलाउड नहीं है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता वहां। उनके जो वस्त्र होते हैं उसमें कोई सिलाई नहीं होती है, एक ही वस्त्र होता है, वो सिलाई बिना सिला हुआ ऐसा वस्त्र होता है। भारतीय सभ्यता में चौका कहा जाता है, चौका कहते हैं ना, चार बातें होनी चाहिए उसमें, पैसा कहां से आ रहा है, किस भाव से बनाया जा रहा है, शुद्धि कितनी है भोजन की, एक ये दूसरा सब्जेक्ट है, और किस भाव से खाया जा रहा है, ऐसी चार बातें हैं। शुद्धि अर्थात कंकड़ पत्थर मिट्टी ये तो नहीं है, अच्छे से धोया हुआ हो, साफ किया हुआ सब्जी साफ की हुई हो, धोया हुआ हो, पानी शुद्ध हो, ये सारी चीजें स्थूल चीजें हैं, पर ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। इसी तरह वो चौका बनता है। तो संपूर्ण योग ये तो हो गया बनाना, अभी है खाना। मौन में हो सके तो भोजन स्वीकार करना, बाबा की याद में स्वीकार करना, धन्यवाद के संकल्प देकर स्वीकार करना। आजकल एक नई सिस्टम आई है, सामने टीवी और इधर भोजन। वो कहते हैं ऊपर जब देखते हैं तो बाबा टीवी देखते हैं, और नीचे जब देखते हैं तो बाबा को याद करते हैं। ऊपर देखते हैं तो टीवी, नीचे देखते हैं तो बाबा को याद करते हैं। ऐसा भी करते हैं। टीवी, वीडियो, इंटरनेट, फोन, मैसेज, व्हाट्सएप, जितना हो सके इनसे दूर, एकांत में और मौन में। अगर सबके साथ खाना है उसमें भी जितना हो सके मौन, अगर बहुत ही महत्वपूर्ण है तो बोले, नहीं तो मौन में बाबा को याद करते करते, श्रेष्ठ संकल्प करते करते। और एक चीज, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, ताकि हम जो भोजन कर रहे ये संकल्प करे कि एक एक निवाला विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। संसार में कितने ही लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, हम जो खा रहे हैं वो सब तक पहुंच रहा है। इस संकल्प के साथ धन्यवाद देते हुए, उस धरती माँ को धन्यवाद, उस किसान को धन्यवाद, बनाने वाले को धन्यवाद, शिव बाबा को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। अलग अलग अभ्यास करना है, एक दूसरा अभ्यास, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरी आंखों से पवित्र किरण इस भोजन पर जा रही है, भोजन शुद्ध हो रहा है। तो ये था भोजन बनाना और भोजन खाना। नाश्ता भी आ गया, सब आ गया इसमें। फिर नियम है नुमा शाम का योग। इसमें ऐसा हो सकता है कईयों की ड्यूटी है, सर्विस है, नौकरी है, ये संभव नहीं हो पाता, परंतु जब भी आप ऑफिस से वापस आए तब भी कम से कम आधा घंटा, 7 और 7:30 तो करें। अगर ये संभव होता ही नहीं है तो जब आए फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा करें। जिन्हों को खुद भोजन बनाना पड़ता है, भाइयों को आकर, वो जैसे कहा वो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को योग में परिवर्तन कर दे। तो नुमा शाम का योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज जो करनी है नुमा शाम, वो है सारे दिन भर जो भी हुआ नुमा शाम को बाबा के कमरे में बैठ के बाबा को बता देना। एक है रात में चार्ट लिखना, मैं नुमा शाम की बात कर रहा हूं, कि नुमा शाम को भी हम बता सकते कि ये आज ड्यूटी में ये हुआ। चार्ट तो दूसरी बात है, चार्ट लिखना, पॉइंट याद का चार्ट लिखना, वो दूसरा, वो नहीं। नुमा शाम में योग चालू करने से पहले बाबा को ये बताएं, अमृत वेला इतने बजे उठे, अमृत वेला किया, फिर चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, फिर सर्विस पर गए, समाचार सुना रहे बस खाली होने के लिए, फिर ऑफिस में किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, खाली हम हल्का कर रहे हैं अपने आप को, दिस इज जस्ट लाइटनिंग द बर्डन। सब कुछ बता रहे एक बार और फिर योग करें, आधा घंटा एक घंटा जितना भी हो सके। रात का भोजन उसके बाद आता है रात के सोने की विधि, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कईयों को आदत है नॉवेल्स पढ़े या बाहर की मैगजीन पढ़े या टीवी देखे, सीरियल देखे, ये सब करते हुए सोना। आजकल एक नया सीरियल चालू है रात में जो आता है। एक दिन मधुबन में कोई हॉस्पिटल का एक भाई कह रहा था, हमने कहा कहाँ जा रहे, वो कह रहे थे अशोक भाई की क्लास है। हमने कहा क्या, वो सम्राट अशोक सीरियल चालू है ना तो इस तरह से कह रहे थे। तो कैसे हम